खुदा बाप, आज का कलाम हम सबको खुदा खुदा तेरे चेहरे की तजल्ली में ज़िंदगी बसर करना खुदा खुदा सिखाए। खुदावन तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे। आज एक एक शोशा, आज एक एक नुक्ता, आज एक एक खुदा खुदा लफ्ज़ जो तेरे कलाम में से पढ़े हम सब की खुदा खुदा रहनुमाई के लिए हो, और हम सब कम होते जाएं और तू बढ़ता जाए। और खुदावंद, कौन है तूने फरमाया कि तेरे आज़ाद किए हुए को गुलाम करे, और कौन है जो तेरे खोले हुए को बंद करे और बंद किए हुए को खोले। कादर मुतलक खुदा, आज हम सब की रहनुमाई कर। खुदावंद यसुम सी नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो बहन भाई कलाम खुदा पढ़ सकते हैं, बाइबल मुकद्दस जिनके पास है मेरे साथ निकालें, गलतियों 4 बाप। गलतियों 4 बाप उसकी पहली आयत से हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे, और हम गौर कर रहे हैं कि हमें कौन से वो काम करने हैं जिनसे हमें फ़ायदा है, और कौन से काम हैं जिनसे हमें किनारा करना है। सो 10 हुक्मों के अलावा जो खुदावन खुदा ने बनी इसराइल कौम को मूसा नबी के वसीला से दिए, उनसे अलावा नए अहदनामा में हमें बहुत ज़्यादा हुक्म मिलते हैं जिनको हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में हमें जांचने की और पहचानने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम एक सिलसिला शुरू करेंगे, और वो हुक्म है, तकरीबन 60 हुक्म है जिस पर हम गौर करेंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या किए गए हैं, कलीसिया को, और कलीसिया के लिए ख़ास अलकात एक दूसरे से, जो लफ्ज़ उन हुक्मों में इस्तेमाल किया गया है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे के लिए ये करो, एक दूसरे के साथ वो ना करो, एक दूसरे की बढ़ोती चाहो। सो एक दूसरे का लफ्ज़ हम उस पर सीखेंगे। इसलिए आज हम गलतियों 4 बाप उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे, और दूसरा हवाला हम गलतियों 5:13 से 15 से पढ़ेंगे। तो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बात उन पर जाहिर करता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारस जब तक बच्चा है, अगर वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकरर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहदों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला देखें, गलतियों 5 बाप उसकी 13 आयत। ऐ मेरे भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पाक कलाम हम सब की रहनुमाई करे, आमीन। सो इन 2 हवालों में पालूस रसूल उन सच्चाइयों पर गौर करवाता है कि हम मसीहियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि 10 हुक्मों के अलावा हमें बहुत से हुक्म दिए गए हैं। यहां पर मिसाल के तौर पर इन दोनों हवालों में पालूस रसूल गलतियों की कलीसिया को फरमाता है कि मसीही जिंदगी बसर करने के लिए कौन सी बातें फायदा की हैं और कौन सी बातें बेफायदा हैं। सो चौथे बाब में वो फरमाता है अपने सुनने वालों को, जिन तक खुदा का कलाम उसने पहुंचाया, कि जब बच्चा कोई होता है तो वो तब तक मुख्तार नहीं होता जब तक वो बड़ा इस काबिल ना हो जाए। वो इस मिसाल को देकर कहता है, जब हम देखते हैं तीसरी आयत, इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। जब कोई नए सिरे से पैदा होता है तो वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाता है। उसी लम्हा खुदा का पाक रूह उस बंदे के बंदी के अंदर आ जाता है और वो बंदा और बंदी खुदा का मकदस बन जाता है। खुदा के पाक रूह का आने का मकसद या बसेरा करने का मकसद ये नहीं कि खुदा का पाक रूह एक तोला या दो तोला या आध पा या पाया इंसान के अंदर आता है। खुदा इस बात में ऐसा कुछ भी नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में साफ फरमाती है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। सो वाजिया तौर पर जबानदारी ये बात कहती है कि फर्जंद होने का हक बख्शा है, ना कि आधे फर्जंद या फिर आधे बेटे या बेटियां। सो फर्जंद से मुराद यानी कि उसके बेटे और बेटियां। सो पालूस रसूल यहां पर कहता है कि हम इब्तदाई दौर पर अपनी उन बातों पर जब गौर करते हैं तो हम गुलामी की हालत में थे, लेकिन अब हमें गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। सो खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के मुतहद पैदा हुआ। शरीयत क्या है? खुदा का कानून, खुदा का तरीकाकार। खुदा मौजदाना तौर पर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है। खुदा चाहता तो खुदा यीशु मसीह को आसमान से सीधा ज़मीन पर उतार सकता था और कह सकता था कि मेरे बेटे पर ईमान लाओ, लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा अबतरी का खुदा नहीं। अबतरी का मुराद यानी कि गुमराही का, फसाद का, बेबाकी, क्या कह सकते हैं जिसे कि बरगश्तगी का खुदा नहीं। वो दुरुस्त तरीके से काम करता है और उसका तरीकाकार तरतीब क्या है? दुरुस्त है। और इस तरीके को हम पदेश की किताब में देख सकते हैं, जब जमीन और आसमान की उसने तरतीब के साथ क्या की है? तामीर या उनको पैदा किया है कि रोशनी हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, सूरज और चांद, दिन, महीने, साल उसने क्या किए? मुकरर किए। सो यहां पर पालूस रसूल कहता है, जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। ये खुदा का कानून है। खुदा ने इब्तदाही से ये कानून ठहरा दिया। जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने फरेब खाया, तो हवा को क्या कहा था? तू जब बेटा या बेटी जनेगी तो दर्द लगेगा और तेरी रगबत, तेरी तवज्जो अपने खामद की तरफ होगी। सो ये निज़ाम किससे शुरू हुआ है? खुदा से, और खुदा ने इस निज़ाम को तैयार किया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को औरत की नस्ल से पैदा होना ज़रूर था, ताकि वो क्या करे कि शरीयत के मुतहदों को, शरीयत के मुतहद कौन थे? तमाम यहूदी, तमाम यहूदी। यहूदियों को शरीयत दी गई थी। हम में से कोई भी यहूदी नहीं है, हम में से यहां पर कोई भी यहूदी नहीं। सो पालूस रसूल इस हिस्सा में बात करता है ताकि शरीयत के मुतहदों को मूल लेकर छुड़ा ले। सो खुदावंद यीशु मसीह के आने से यहूदियों का कफारा हुआ, और आगे क्या लिखा है? और हमको जो आज मौजूदा हैं, जो उस वक्त उसकी पालूस रसूल की बातें सुन रहे थे, और हमको ले पालक होने का दर्जा मिला। ले पालक यानी कि ले के पाला हुआ बेटा या बेटी, इंग्लिश में जिसके लिए अडॉप्ट कहते हैं, कि किसी के बेटे या बेटी को लेकर अपना बेटा बना लेना। सो खुदावन खुदा, जैसे दुनिया का रवाज है, खुदावन खुदा ने भी वो आसमानी दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी उसे मिटाकर यीशु मसीह ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। सो इसलिए इस दर्जा को हासिल करने के बायस अब हमें क्या हासिल है? चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है कि हमारा रिश्ता, हमारा बंधन, हमारा क्या तलक है खुदा बाप के साथ। खुदा का पाक रूह ही हमें, बाइबल मुकद्दस यहां तक कहती है कि जो कोई खुदावंद को नहीं जानता वो नहीं कह सकता कि खुदावंद मलाउन है। सो हमें कौन सा दर्जा मिला है? बेटे होने का, बेटे बेटियां। इसलिए ये हमारे फायदा की बात है। इस फायदा की बात से हमें क्या सीखना चाहिए? सातवीं आयत, पस तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा हो। पस तुम गुलाम नहीं रहे, अब खुदा के बेटे और बेटियां हो। इसलिए खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमें जिंदगी बसर करनी है। खुदा के बेटे और बेटियों का रवैया हमने देखा था। मेरे साथ निकालें खुदा के बेटों और बेटियों का रवैया, रोमियो 12 बाब। रोमियो 12 बाब, खुदा का बंदा पालूस रसूल रूह में मामूर होकर रूह की रहनुमाई में खुदा के पाक रूह की आवाज को सुनते हुए खुदा के बेटों बेटियों का रवैया, जो आसमानी रवैया है, बयान करता है। रोमियो 12 बाब, जब हम उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रौ से एक दूसरे को बेहतर समझो। ये वो सारे हुक्म हैं, आने वाले वक्त में हम इन पर गौर करेंगे गहरे तौर पर। कोशिश में सुस्ती ना करो, हुक्म है। रूहानी जोश में भरे रहो, हुक्म है। खुदावन की खिदमत करते रहो, हुक्म है। अमीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल, ये तमाम हुक्म है। मुकदसों की एहतजाजें रफा करो, यानी कि ईमानदारों की एक दूसरों की जरूरियात पर गौर करने की जरूरत है। जिनके पास है उनको देना चाहिए, जिनके पास नहीं है, ये आसमानी रवैया है, दुनियावी रवैया नहीं हो सकता। दुनियावी रवैया क्या है? अगर आज मैं ऐसे दूंगा तो कल मुझे मिलेगा। जैसे हमारा शादी ब्याह का निजाम है यहां पर, इसने 500 नेंदा डाला है, मैं अगली दफा इसके बेटे की शादी पर दुगना करके लटाऊंगा, 1000। ये इंसानी तरीकाकार है। लेकिन मुकद्दसीन की, ईमानदारों की, मुकद्दसीन, आप सबको बाइबल मुकद्दस मुकद्दसीन कहती है, कोई इंसान नहीं, खुदा खुद, खुदा का बंदा पालूस रसूल, खुदा खुद कहता है कि तुम मेरे चुने हुए मुकद्दसीन लोग हो। और मुकद्दसीन से बढ़कर जो हमें लकब मिलता है, खुदा के बेटे और बेटियां। सो पालूस रसूल कहता है मुकद्दसीन की एहतजाजें रफा करो। एहतजाजों से मुराद यानी कि जरूरतें, अगर कोई जरूरत में है तो तुम्हारे पास है तो उसे दो। मुसाफिर परवरी में लगे रहो, अगर कोई मुसाफिर आ जाए तो उसकी देखभाल करनी ईमानदारों के लिए बहुत ही बरकत का बायस है। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, ये हुक्म है, ये सलाह नहीं। हुक्म से मुराद मैं कहता हूं, अगर करोगे तो बरकत पाओगे, वरना कोई बरकत नहीं। जैसे अस्तिसना की किताब उसके 28वें बाब में, अगर तू आज के दिन इन हुक्मों पर अमल करे जो मैं तुम्हें देता हूं, तू बाहर जाते भी मुबारक होगा, अंदर आते भी मुबारक होगा, तेरा कटोरा मुबारक होगा, तेरे घर के माल जंगर सब मुबारक होंगे, उनमें बढ़ोतरी होगी, जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो बरकत भरा होगा, तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और वो सात सात रास्तों से भागेंगे, और तू मुबारक होगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आसमान से वक्त पर औस पड़ेगी और ज़मीन अपना हासिल देगी, पैदावार देगी, और तू मुबारक होगा। और खुदावन वहाँ पर वादा करता है बनी इसराइल कौम से, और हम उससे यहाँ गहरे तौर पर सीख सकते हैं। खुदावन ने वहां पर बनी इसराइल कौम से क्या कहा? मैंने तुमको दुम नहीं बनाया, सर ठहराया है। इसलिए हम मसीह में फर्जंद ठहराए गए हैं, गुलाम नहीं बनाए गए। सो हमें फर्जंदों की तरह, बेटों बेटियों की तरह जिंदगी गुजारनी है, गुलामों की तरह नहीं। बरकत चाहो लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। ऊंचे ऊंचे ख्याल होते हैं ना जी, शेख चिली की तरह, मैं वहां पर गया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सब दिमागी कहानियां। सो अपने आप में क्या कहो, यक दिल रहो, एक दिल रहो। काश के ऐसा हो जाए कि हम एक दिल हो, एक रूह हो, एक जां हो। और क्या लिखा है, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो बल्कि अदना लोगों की तरफ, अदना लोगों की तरह मतवजा हो। किसी अदना को देखा है, किसी फकीर को, किसी फकीर को मांगते हुए कि वो पूरी तवज्जो से उसकी आंखों में कभी देखें। अगर वो वाकई जरूरतमंद है तो वो पूरी तवज्जो से अदना लोगों की तरह अपने रुपए पैसे देने वाले की तरफ मतवजा होता है। इसलिए अदना लोगों की तरह ऐसे जैसे कि तुम्हें वाकई ही जरूरत है। सो ये तमाम हुक्म है। अपने आप को अकलमंद ना समझो। बहुत दफा करंथियों की कलीसिया में आने वाले वक्त में हम मतालिया करेंगे, करंथियों का खात शुरू करेंगे, आयत बा आयत, लफ्ज बा लफ्ज और मजमून बा मजमून तफसीर उसकी देखेंगे। अपने आप को अकलमंद ना समझो। बदी के इव्ज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। तदबीर से मुराद यानी के उस बात की बढ़ोती करो, उस बात को कहो, उस बात को सराहो कि ये बात अच्छी है, इसे करना चाहिए। सो बनी इसराइल कौम को खुदा ने क्या कहा था, मैंने तुमको दुम नहीं बल्कि सर बनाया है। नहीं यकीन, आए कहां पर कहा गया है, इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब। जब हम उसकी 13 आयत को देखते हैं, सारी बातों में पहली 18 और 15 आयत में खुदा कहता है, बरकत दूंगा अगर तुम ये करोगे, अगर ना करूंगा तो तुम में से बीमारी नहीं जाएगी, तुम में से कोढ़ नहीं जाएगा, तुम में नासूर होंगे, ये वो बहुत सी बीमारियां वहां पर जिक्र किया गया है। सो खुदावन का बंदा मूसा बनी इसराइल कौम को यहां पर लानत और बरकत के बारे में बयान करता है। 13वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते, शर्त क्या है, कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं आज के दिन तुझे देता हूं उसे सुने और एहतियात से उन पर अमल करें। खुदा से बरकत लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी की बात है, जो कुछ वो कहता है उसकी माने। अस्तिस्ना 28वां बाप उसकी 13 आयत। सो हम तुम नहीं हमें बनना बल्कि सर हमें बनना है। तो बनी इसराइल से ये वादा किया गया, इसलिए आए हम इस बात पर गौर करें कि हम गुलाम नहीं बल्कि आजाद हैं। इसलिए आजाद होते हुए हमें क्या करना है। गलतियों 5 बाप उसकी 12 आयत। ऐ भाइयों, जिसमें भाइयों को मतवज्जा किया गया है, क्योंकि यहूदी रवाज में मर्द को गिना जाता था। आप सबको याद है कि जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया तो वहां पर मर्दों का जिक्र किया गया है, बच्चों और औरतों का जिक्र नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहूदी औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को तरजीह देते थे, और इसलिए देते थे क्योंकि मर्द पर जिम्मेदारी है। औरत मर्द से निकली है, मर्द औरत से नहीं निकला। इससे हरगिज मुराद ये नहीं कि जो हमारे वतन में, हमारे मुल्क में कानून है कि औरत उस जमीन की तरह इस्तेमाल की जाए कि जिस पर जब चाहे कोई थूक दे, जब चाहे उसे वाले और जब चाहे उसे बंजर करने के लिए छोड़ दे। हमें अपने मुल्क में रहते हुए ऐसा वैश्याना रवैया इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों में एक मैंने टीवी पर प्रोग्राम देखा कि एक औरत, उसके पड़ोसी ने आकर पूछ लिया कि तेरा खामन कहाँ है, और उसने नकाब हटाकर कह दिया कि भाई जी वो घर नहीं। और उस कसाई ने आकर क्या किया, उस औरत की नाक को काट दिया, उसके कान काट दिए, और बहुत से अंदरूनी हिस्से जो शर्मनाक जगह हैं उनको दुख पहुंचाया। किस लिए कि जी इस औरत ने गैर मर्द को देख लिया। ऐसे वैशी को चाहिए कि चौक में खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। सो पालूस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। हमें अपनी आजादी को बेफायदा इस्तेमाल नहीं करना। हम आजाद लोग हैं, इसलिए अपनी आजादी को समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। पालूस रसूल क्या कहता है, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे की खिदमत करो। सो आज इस सवाल के साथ कुश्ती करें कि हम किस तरह एक दूसरे की खिदमत कर सकते हैं, किस तरह एक दूसरे की खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लिखा है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात में पूरा अमल हो जाता है, यानी इस पर कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मेरा पड़ोसी कौन है, सवाल पर गौर करें। सो हम मसीहियों के लिए पड़ोसी चाहे 10 मील पर है, वो हमारा पड़ोसी है मसीह में। ना कि जी इस नुक्कड़ से 40 घर यहां और 40 घर यहां, ये मेरे पड़ोसी हैं और बाकी सब दुश्मन हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा पतरस इस बात को यूं खत्म करता है, मेरे साथ निकालें पहला पतरस, और हम भी यहां पर आज के पैगाम को यूं ही खत्म करेंगे। पहला पतरस 2 बाप उसकी 16 आयत। सब मेरे साथ कह सकते हैं, पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। आजादी बदी का पर्दा बन सकती है। मैं आजाद हूं, मैं जो कुछ मर्जी कर सकता हूं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मसीही भी हैं। बाइबल मुकद्दस में आजादी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, उनको बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, ठोकर ना बनो, किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनो। सो इस मजमून पर हम आने वाले महीने और 4 के 4 महीने जब तक हम यहाँ हैं सीख सकते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो बेफायदा हैं और वो कौन सी बातें हैं जो फायदा की हैं। हम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए आज़ादी का पैगाम क्या है, आज़ाद करो। खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए क्या था कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसीलिए मसा किया कि मैं कुचले हुओं को आज़ादी और अंधों को बनाई और लंगड़ों को रहाई और वगैरह वगैरह बातें। खुदा के सारे कलाम की क्या करूं, मनादी करूं। इसलिए